Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। यथाइ गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत ग्रंथ महाशय की जय। तो आप सबका आज के इस चंडीगढ़ की सभा में स्वागत है। कुछ लोग बम्बई से भी बैठे हैं, उनका भी स्वागत है। आनंद गोपाल प्रभु और रास कौरांग प्रभु और अंजलि माता जी और कनिका माता जी, आपका भी स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से 8वें अध्याय से पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कुंती माता जी की प्रार्थनाएं। आपको थोड़ा सा शांति रखना पड़ेगा। 24वां श्लोक है, 1.8.24। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे ने मकमहारथास्त्रो द्रौण्यस्त्र शास्म हरेर्भिरक्षिताः। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है, थोड़ा संक्षेप में उसका पार्श्वभूमि इस तरह से है, बैकग्राउंड, कि कुंती देवी भगवान से प्रार्थना कर रही है और कुंती देवी का जीवन जो है बहुत संघर्षों से गुजरा हुआ है, बहुत चुनौतियाँ और परीक्षाएं हो चुकी हैं। तो अभी भगवान द्वारका जा रहे हैं, ये सब कुछ हो गया, अभी महाभारत हुआ, हस्तिनापुर का राजकारण हुआ, सब कुछ हुआ, अभी सब कुछ महाराज युधिष्ठिर राजा सिंहासन में बैठ गए हैं, सब कुछ ठीक हो गया। अभी भगवान वापस लौट रहे हैं द्वारका में। तो जब वापस लौट रहे हैं तो कुंती देवी वहाँ पर आती है और भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान से अपना मन का निवेदन। दरवाजे सब बंद कर देना, जितने भी दरवाजे हैं। तो वो बता रही है कि थोड़ा इतिहास को वो संक्षेप में वर्णन कर रही है, क्या क्या हुआ। उसमें कह रहे हैं कि मेरे बालक को विष दिया गया, विशान महाग्नि, विशान यानी विष दिया, महाग्नि यानी वारणावत के जंगल में जलाने का प्रयास किया गया। पुरुषा अध का मतलब है हिंस जानवर, राक्षस, मनुष्य भक्षी, पुरुषा अध कहा गया। तो हिडिम्बा राक्षसी थी ना, हिडिम्बा राक्षसी, उसका बेटा हिडिम्बा से युद्ध करना पड़ा भीमसेन को, बाद में उसका ही पुत्र निकला, वो बात अलग है। और वनवास कृच्छ्रतः यानी वनवास में बहुत सारा कष्ट भोगा ना उन्होंने, 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, बहुत कष्ट का समय रहा। तो ये सबका वो एक रिविजन कर रही है और क्या कह रही है कि उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ, ऐसा नहीं कि ऐसा होने के बाद समाप्त हो गया। महाभारत का युद्ध हुआ और भयंकर योद्धाओं के साथ उनको युद्ध करना पड़ा। कोई साधारण लोग नहीं थे वो, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, शकुनी, दुर्योधन, कर्ण, ऐसे महान महान लोग थे उसके अंदर। तो वो भयंकर संघर्ष रहा जीवन में और अब लग रहा था कि समाप्त हो गया, अभी ऐसा लग रहा था। तो उसमें से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया ताकि कुरु वंश का आखिरी वंश जो है गर्भ में वो भी समाप्त हो जाए। तो कैसे है ना, एक के बाद संघर्ष चल रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि इतने संघर्ष आए लेकिन आपने हमको बचाया। जितने भी संघर्ष आए, उधर एक चक्र में गए तो उधर बकासुर का संकट आया, बकासुर को फिर वध हुआ उसका। तो बहुत सारे संकट इस दुनिया में आते रहे। तो कुंती देवी ना ये पूरी प्रार्थना में एक भगवान को अपना एक कृतज्ञता व्यक्त कर रही है, अपना भाव व्यक्त कर रही है। फाइनली कैसा है ना कि मनुष्य कैसा होता है कि जब ये दुख होता है ना जीवन में तो दूसरे को ब्लेम करता है कि तुम्हारे वजह से हुआ, तुमने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ। बीवी को बोलेंगे, पति बोलेंगे, पति बीवी को बोलेंगे, और कोई किसी को ऑफिस के बॉस को बोलेगा, ये सब उनकी वजह से हुआ। लेकिन जब भी कुछ अच्छा होता है ना तो मैंने किया है ना, और वो किसी ने भी किया होगा, हम जानते भी है कि इसने किया इसलिए हुआ, लेकिन मैंने किया उसका श्रेय हम लेंगे। लेकिन कुंती देवी कह रहे हैं कि इतने संकट आए, वास्तव में भीमसेन ने बकासुर को मारा, भीमसेन ने हिडिंबा को मारा, विदुर के सलाह के वजह से वो वारणावत से भाग गए ना, वो उधर सुरंग खोदा, वो सब कुछ तो विदुर जी की योजना से हुआ। विष निकला तो फिर वो नीचे के जो सांप थे वो काटे उन्होंने, तो फिर विष निकल गया उनका। ऐसे लौकिक दृष्टि से बहुत अलग अलग लोग उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन कुंती देवी जानती है ना, भगवान की भक्त है, वो जानती है कि सब भगवान की इच्छा है, इसलिए वो हम लोग बच गए। तो ये पहला श्लोक है जिसमें हमें संक्षेप में ये समझना है कि हमारा जीवन जो है ना वो कभी भी संकटों से मुक्त नहीं है। माम उपेत्यंत कौन्तेय दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ पर है ना, कोई भी सुख की गुंजाइश भगवान ने नहीं की है, नो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट है ना वो खाली दुख की है, और दो दुखों के बीच में जो गैप होता है ना उसको हम सुख कहते हैं। जैसे आपने कहा किसी को आपने ऐसा बाल पकड़ के ऐसा जल के अंदर डुबा के रखा है, ऐसा बहुत देर तक दबा के रखा है, और कुछ देर आप उसको छोड़ते हो तो एक चैन की सांस लेता है वो, तो सोचता है कितना सुख प्राप्त मिला मुझे, लेकिन वो दुख का अभाव है खाली, है ना। अंदर था तो वो चौकप हो रहा था, एक क्षण बाहर निकाला तो थोड़ा हवा ली, सांस लिया उसने, तो उसको लगा कि देखो कितना सुख है इस हवा में। फिर बाकी दिन तो हवा में रहता है वो, तभी उसको सुख का अनुभव नहीं होता है। दुख का अभाव यही सुख का अनुभूति है। दुख का न होना, बीच में गैप होता है ना, थोड़ा सा थोड़ा विश्राम होता है बीच में। लेकिन बंद करना दरवाजे से प्लीज। तो संक्षेप में हम सब लोग को ये बात हृदय में बसानी है कि इस दुनिया में केवल दुख का अभाव जब होता है ना तो ही इसको हम सुख मानते हैं, वास्तव में सुख नहीं है वो। सुख और दुख ये सापेक्ष कल्पना है, रिलेटिव कंसेप्ट, और आनंद ये सकारात्मक कल्पना है। आनंद का कोई काउंटर पार्ट नहीं है, सुख का काउंटर पार्ट है दुख, और दुख का भी है सुख। ये आनंद ये एब्सोल्यूट संकल्पना है, अपनी जगह पर स्थित है, उसका कोई उसके बदले में ऐसा धूप और छांव ऐसा कुछ नहीं है। आनंद आनंद है, और आनंद हमारा आपका स्वभाव है सबका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम लोग सब लोग यहाँ पर दुखी क्यों हैं, क्योंकि हमें आनंद की हमारी जो हमारा जो स्वभाव है, जो हमारी मूल स्थिति है आत्मा की, उसको कहते हैं स्थायी भाव, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। वो जो स्थायी भाव है वो आनंद का है, और हम आनंद को खोज रहे हैं लेकिन गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं जहाँ पर नहीं है आनंद। जैसे करेले के बेली पर हम आम ढूंढ रहे हैं, तो आप पूर्व से जाइए, पूर्व से पश्चिम से जाइए, दक्षिण से जाइए, उत्तर से जाइए, करेले में आपको करेला ही मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। कितना भी आप बुद्धिमान होंगे, आपको हाईटेक टेक्नोलॉजी होगी, तो भी करेले पर आपको आम मिलेगा नहीं, क्योंकि करेले में आम की व्यवस्था नहीं है। आम मिलेगा तो आम के पेड़ के पास ही मिलेगा, वो भी मई महीने में जाएगा तो मिलेगा, जनवरी में नहीं मिलेगा, इतना स्पेसिफिक है वो। वैसे आत्मा का जो आनंद है वो केवल भगवान के ही पास है और नहीं है। और भगवान के पास भी जाएंगे और शरणागति के भाव से नहीं जाएंगे, मतलब आम के पेड़ के पास जाएंगे लेकिन जनवरी में जाएंगे, तो आम का पेड़ होने पर भी आपको आम नहीं मिलेगा। भगवान के पास जाएंगे और शरणागत हो जाएंगे तो आपका कनेक्शन बनेगा, तो आपको आनंद का अनुभव होगा। ये मेन समझने वाली बात है। आपने कितना भी हाथ पांव हिलाए ना इसमें, कितना भी कष्ट किया ना दुनिया में, फिर भी आपको यहां पर सुख का अनुभव नहीं, केवल दुखी दुखी। ये बहुत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक बात है जो हमें सबको एक बार जीवन में समझना चाहिए कि दिस वर्ल्ड इज नॉट मेंट फॉर हैप्पीनेस। और जिस वर्ल्ड में हैप्पीनेस नहीं है उसमें आप कितना भी ढूंढेंगे तो भी आपको वो नहीं मिलेगा, रखा ही नहीं तो कैसे मिलेगा। वेलकम। तो ये श्लोक है, दोबारा एक बार पढ़ते हैं उसको। विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत सभाया वनवास कृच्छत्रह मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्र तस्रास्म हरेर्भिरक्षिता। लाइन से दुखों का वर्णन किया है और बाद में कहा है हरेर्भिरक्षिता हरेर अभिरक्षिता। इसका अगला श्लोक अभी कैसा है, ये एक भूमिका है। कुंती देवी ने एक लिस्ट बता दी कि ये हमने कष्ट भोगा, आपके वजह से बच गए। लेकिन अगर हम होते ना उस जगह पर, बोलते भगवान हम आप तो भक्त थे आपके, फिर भी देखो कितनी लिस्ट बड़ी कष्टों की। मोबाइल को जरा स्विच ऑफ करना पड़ेगा माता जी को। हाँ हो गया। तो फिर भी हमको कष्ट हुआ, भगवान आपने ऐसा क्यों किया, आपके भक्ति करके क्या फायदा हुआ, आपके भक्त बने रहे फिर भी इतना कष्ट हुआ। अरे लोग तो वो कष्ट से मुक्ति करने के लिए भक्ति करते हैं, और आपको आपके साथ भक्ति करके बाद भी हमको इतना कष्ट हुआ, ये हमारा मूड होता। लेकिन अभी ध्यान से सुनिए कुंती का मूड क्या है। एक साधारण व्यक्ति और एक भक्त के विचार करने में कितना अंतर होता है, वही चीज है। एक घटना घटी है तो भक्त क्या सोचता है और आम आदमी क्या सोचता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। वे कुंती क्या सोच रही है, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। अभी हम बोलेंगे भगवान बस करो, अभी फुल स्टॉप लगा दो तकलीफों को, बहुत दिन हो गए, अभी थोड़ा रिलीफ दे दो अभी आप। तो वो ऐसा नहीं कह रही है, वो कह रही है कि मैं ये इच्छा करती हूँ कि जितने सारे प्रकार के वर्णन मैंने किए ना दुखों के, वो बार बार आते रहे। और क्यों बार बार आते रहे, क्योंकि हर बार जब आए तो आप आए, आपका दर्शन हुआ, और आपका दर्शन हुआ तो दोबारा जन्म मृत्यु को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सोचने का तरीका है। दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीटली रेवोल्यूशनरी वे ऑफ थिंकिंग। हर व्यक्ति सुबह उठता है ना, चाहे हम हो या संत हो या कोई नई आम आदमी हो, कोई भी हो, सुबह जब उठता है सोचता है कि आज के दिन में ना दुख नहीं होना चाहिए। बताओ आप सब सोचते कि नहीं, आज के दिन में जो कल हुआ था वो आज नहीं होना चाहिए, जो कष्ट हुआ था कल तकलीफ हुई तो आज नहीं होना चाहिए और आज सुख मिलना चाहिए। ये हर एक व्यक्ति सोचता है, और हर एक व्यक्ति सुख चाहता है और दुख नहीं चाहता है। दिस इज कॉमन, क्योंकि स्वभाव आपका आनंद का है ना इसलिए। लेकिन यहाँ पर कुंती देवी ऐसा एक क्रांतिकारी इच्छा प्रकट कर रही है कि मुझे दुख मिलने दो, जो जितने दुख हुए ना वो सिलसिला चलते रहने दो, क्योंकि संतों की दृष्टि अलग होती है। हाँ, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए, जिस तरह से वैष्णव सोचते हैं ना आम आदमी नहीं सोच सकता है। वो क्या सोचते हैं कि जब कष्ट आए हमने आपको याद किया, हमने आपको याद किया तो आप आए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से आप आए, आपने हमको बचाया, और आप आए आपका दर्शन हुआ, मतलब क्या हुआ, जन्म मृत्यु से मुक्ति होगी। तो प्रभुपाद जी ना तात्पर्य में बहुत सुंदर बात करते हैं। प्रभु जी सॉरी, तो भगवान कहते, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्त है भगवान का, उसके लिए कोई भी दुख जो है वो भगवान की शरणागति स्वीकार करने के लिए एक रीजन होता है। कोई भी संकट हो, भगवान की शरणागति लेने के लिए, भगवान के आश्रय ग्रहण करने के लिए एक और मौका है उनके लिए, और भगवान की याद करने का भी एक और तरीका है कोई भी संकट है तो। क्योंकि ना हम लोग भी ऐसे होते ना, बहुत सुख आया ना तो भगवान की याद नहीं करते, भूल जाते हैं। सुबह जब कर लिया तो दिन भर भूल जाते हैं, क्योंकि इतना सुख है, पैसे आ रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है, बहुत सारा चीज़ हो रही है, तो सुबह जब कर लिया लेकिन दिन भर में आदमी याद नहीं आता है, उसी में लगे रहते हैं। हाँ, लेकिन दुख आया तो क्या होता है, अगर आप भक्त हैं, दुख आया तो तुरंत हे भगवान कहाँ हो आप, ऐसा बोलेंगे। तो एक तरह से ना एक बहुत विशेष बात आपको समझना जरूरी है, सुख और दुख, सॉरी पाप और पुण्य, इनमें से अच्छा कौन सा है बताइए, और बुरा कौन सा है? यस, आप बता सकते हैं पाप और पुण्य में प्रेफरेबल क्या है? पाप की पुण्य, वो पुण्य कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? अंजलि माता जी क्या कह रही हैं?
प्रभु जी दोनों ही चेंज हैं। हाँ
दोनों ही क्या है? दोनों ही चेन है।
जी
अच्छा,
बोथ आर बाइंडिंग।
बोथ आर बाइंडिंग, वेरी गुड, ओके। तो एक मिनट ना, जरा मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ इसको जरा। तो वास्तव में पाप और पुण्य में अगर आपको चुनना है तो आपको पाप ही चुनना पड़ेगा। आप बोलेगा ऐसा तो सुना नहीं कभी हमने, पाप तो दुख देता है, लेकिन पाप है ना। अच्छे और बुरे की व्याख्या किससे की जाती है? अच्छी वो चीज़ है जो आपको भगवान का स्मरण दिलाती है, पवित्र वो चीज़ है जो आपको भगवान का स्मरण दिलाती है, भगवान का संबंध कराती है, भगवान से मिलाती है, और बुरी वो चीज़ है जो भगवान से आपको जुदा कर देती है। अभी आपको समझ में आया कि पाप और पुण्य ऐसी व्याख्या क्यों कर रहा हूँ? अगर धन दौलत, अगर प्रमोशन, अगर सौंदर्य, अगर कीर्ति आपको मिलती है, वो आपको भगवान से बुला देती, भगवान को बुला देती है, तो वो अशुभ है। और अगर आपको दर्द हो रहा है, आपको कैंसर हो गया है, आपको बहुत पैसे नष्ट हो गए, आपके घर भी नष्ट हो गया, बहुत सारे संकट आ गए और आपको भगवान की याद आई, तो वो भी शुभ है आपके लिए। जो भी वस्तु आपको भगवान की याद दिलाती है, स्मृति दिलाती है, वो शुभ है। इसलिए दुनियादारी की व्याख्याएं जो है ना, वो इससे पूरी उल्टी होती है। दुनिया में क्या कहते हैं, अरे कितनी कृपा हो गई हमारे ऊपर, देखो छोटे घर से बड़े घर में आ गए, देखो इतनी सी नौकरी करते थे पहले, देखो चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री बन गए, कितनी बड़ी कृपा हो गई भगवान की। ये सब कृपा नहीं भगवान की। अगर उस यात्रा में, चाय के वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक की यात्रा में अगर भगवान की स्मृति रही तो वो सब शुभ ही शुभ है, और नहीं रही तो फिर अशुभ ही अशुभ है। और ये शुभ है कि अशुभ है ये केवल आप जानते हैं, मैं नहीं जान सकता। आपके जीवन में धन दौलत आने के बाद में वो आपके लिए शुभ है कि अशुभ है, ये केवल आप ही कह सकते हो, क्योंकि आप ही जानते हो कि आपको भगवान की स्मृति हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कुंती देवी की विचारधारा यही है, वो क्या कह रही है, कॉन्स्टेंटली रिमेंबरिंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड मीन्स प्रिपेयरिंग फॉर लिबरेशन फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। भगवान की स्मृति नित्य स्वरूप में, नित्य रूप में होना, इसको मुक्ति कहते हैं, जन्म मृत्यु के कष्ट से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए वो बुद्धिमान स्त्री है, ये हमारे इतिहास में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां नहीं है, बहुत गिनी चुनी स्त्रियां हैं, उनको विदुषी कहा गया है। एक द्रौपदी है, कुंती है, एक सीता है, एक अहिल्या है, एक अनसुईया देवी है, मैत्री, मैत्री मुनि की कन्या एक है, ऐसे बहुत कम स्त्रियां हैं जो ऐसे स्तर पर हैं तो ऐसा सोच सकती है, इतनी हिम्मत कर सकती है। आप कह सकते हैं अगर आपके जीवन में कैंसर हो गया तो हमारा भगवान बार बार कैंसर होता रहे, ठीक ही ना हो, ऐसा बोलेंगे आप? बोल सकते हैं अभी एक बार कीमोथेरेपी किया वो ठीक ही ना हो, बार बार होता रहे कीमोथेरेपी, ऐसा नहीं कह सकते ना हम लोग। लेकिन ये ऐसे ही बैठ के एरे गोरे के बीच में नहीं कह रही है, भगवान के सामने खड़े होकर कह रही है, कितनी हिम्मत है उसको, क्योंकि भगवान शायद आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। अगर आप मांगेंगे तो ऐसे भी संभावना है ना वहां पर, ऐसे भी किधर भी बोलना ठीक है, एक डायलॉग मार दिया लोगों ने, वाह वाह कर दिया, वाह क्या बात है, ऐसे करके खत्म हो गया। लेकिन भगवान के सामने कहना कितनी हिम्मत की बात है कि भाई दे दो। तो क्यों कह रहे वो, क्योंकि उनको विश्वास है कि जब कष्ट होता है तो आपकी याद आती है, और आपकी याद ही, आपकी याद ही इस कष्ट से परमानेंट मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है। क्या श्लोक है वो, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। और एक भी श्लोक है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंति कलेवरम, तम तम एव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो उन्होंने स्मृति पर जोर दिया भगवान ने, स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण से आरंभ होता है, फिर हम कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, लेकिन श्रवण कीर्तन करने से क्या निर्माण होता है, स्मृति। जो भी आप बोलते हैं ना दिन में और जो भी आप सुनते हो वही आपकी स्मृति में रहता है। अभी आपने 3 घंटे का सनसनीखेज मूवी देखा कोई, हमारे टाइम पे तो शोले, हाँ कोई देख लिया भयंकर मूवी, मुझे याद है अभी भी। मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूँ, जब मैं शोले देख के आया था ना तो 3 से 4 दिन तक मेरा दिन रात पिक्चर मन में घूम रहा था फुल डायलॉग के साथ। उसके बाद कोई त्रिशूल देखी थी, उसके बाद भी वही त्रिशूल चल रहा है, हाँ। फिर कोई जंजीर देखी थी, फिर वही चल रहा है। और जितनी भी मूवी देखी थी ना वो मूवी 7 दिन तक चलती थी मुंह में और मन में। ऑडियो, इस ऑडियो विजुअल ना, आप श्रवण कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपकी सारी इंद्रियां उसमें लगी हुई हैं एकाग्रता से, उसका परिणाम कई दिन तक रहता है। और अभी भी कभी आपने गलती से कुछ देख लिया यूट्यूब पर, कई घंटे आपका दिमाग में चलता रहेगा, और उसी जगह पर यूट्यूब में आपने कोई प्रोग्राम देख लिया भगवान का या कोई गुरु जी का लेक्चर देख लिया तो वो भी चलता रहेगा आपके मन में। इसका मतलब क्या है, श्रवण जो आप सुनते हैं देखते हैं और जो आप बोलते हैं चर्चा करते हैं डिस्कस करते हैं, आपकी चर्चा में कौन सा विषय है वही आपके स्मृति का विषय बनेगा। इसलिए आपको सोचना यह है कि मैं क्या सुन रहा हूं और मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों का मिक्सचर बनके आपकी स्मृति बनेगी जो विषय में होगा वो। तो आपके श्रुति से क्या अंदर लेना है और आपके मुख से क्या छोड़ना है ये आपको तय करना है, क्योंकि वही आपकी स्मृति बनेगी और वही स्मृति आपके आगे की यात्रा का बेस होगा। अगर स्मृति आपकी धन की है, धन के बारे में सुनते हो ऑल टाइम, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का देख रहे हो, सुन रहे हो, वही चर्चा चल रही है कैसा होगा, कौन सा ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, क्या मंदी आ रही है कि वृद्धि हो रही है, यही चलता रहेगा, तो श्रुति किसकी होगी, धन की होगी। और वो आप लगातार 5 दिन हफ्ते में कर रहे हो, महीना भर कर रहे हो, आप अभी नए नए एंट्री कर चुके हो तो आप दिन रात मेहनत करोगे उसके अंदर। तो सपोज उसके अंदर मृत्यु हो गई आपकी, सॉरी टू से, तो क्या होगा, धन की स्मृति में मृत्यु होगी आपकी, तो धन के पास दोबारा जन्म दिलाएगी आपको, जहां पर धन है जहां पर आपकी योग्यता है, लेकिन धन के पास ही आपकी अगले जन्म की व्यवस्था हो जाएगी। या आपका विवाह नहीं हुआ है और आप दिन रात घर में चर्चा चल रही है, ये लड़की देखो वो लड़की देखो, ये अच्छी नहीं थी वो क्या हुआ, वो और देखो कोई, वो क्यों नहीं मिल रहा है भगवान, लड़का शादी क्यों नहीं हो रही है, आप सुन भी होती वही बातें रह रहे हैं, वही उसी प्रपोजल की सुन रहे हैं, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अचानक मृत्यु हो गई तो क्या होगा, वो स्त्री विवाह करना है उसी के विषय में आपका वहीं पर जन्म होगा जहां पर आपकी चेतना होगी। हो सकता है किस चिंतन पर हमारा ध्यान तो होगा, नोबडी नोज, कोई कह सकता है क्या? तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसकी फॉर्मूला बता दिया आपको, जो सुनेंगे जो कहेंगे वही स्मृति बनेगी। तो आपको अभी तय करना है सुनना और बोलना क्या है, और दिन रात अगर भगवान के विषय में सुनते रहेंगे और दिन रात उनके विषय में बोलते रहेंगे तो स्मृति भी उनकी बनी रहेगी। अभी बॉम्बे में एक विवाह चल रहा है आज, है ना, तो दिन भर जो विवाह में थे वो शाम को भी उसके बारे में बात करेंगे, और सपने में भी वही आएगा, वो जिलेबी कितनी बढ़िया थी और दूल्हा कितना सुंदर था, दुल्हन कितनी सुंदर थी, उसकी घर में आके भी चर्चा करेंगे, अरे वो शादी के भोजन में तो जिलेबी तो बेकार थी है ना, अरे देना तो घी से देते कम से कम, वो तेल वाले क्यों दी, ये चर्चा होती कि नहीं घर पे बताओ आप मुझे। अक्सर शादी में जाने के बाद क्या चर्चा करते हैं, भोजन में क्या अच्छा था क्या खराब था, फर्स्ट चर्चा करेंगे खराब क्या था और बहुत देर के बाद में अच्छा का धुरी से बोलेंगे। तो जो सुन रहे हैं चर्चा कर रहे हैं उसकी स्मृति बनेगी। तो कुंती देवी आपको यहाँ पर एक अच्छा फॉर्मूला बता रही है, कि संकट आने पर स्मृति भगवान की होती है, अक्सर होती है, आम आदमी भी करता है, तो स्मृति भगवान की होती है तो वो मुक्ति का कारण बन जाती है। इसलिए वो कहती है विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, बार बार आने दो उसको। और अभी अभी क्या कह रही है उसका, अभी कहना क्या है, अरे भगवान जब संकट थे तो अभी आपके आप हमारे साथ थे, हर समय हमारे साथ में आते थे, कहीं कहीं प्रकट हो जाते थे, आप असत सभा में कहीं भी नहीं थे, द्रौपदी का अवस्त्रण हो रहा था, असत सभा है वर्णन किया ना पहले उधर, असत सभा या वनवास कृतहा, तो आप कहीं भी नहीं थे लेकिन द्रौपदी ने पुकारा हे गोविंद, तो आप आ गए वहां पर। कैसे आ गए? अमरा अवतार के रूप में आ गए, वस्त्र अवतार के रूप में आ गए, अनंत वस्त्र अवतार रूप में, और बचाया आपने, तो आते हैं आप, ये विश्वास है भक्त को। इसलिए बार बार कह रही है ये हिम्मत के साथ कि इतने संकट आए और आपने हमको हर समय आकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बचाया। अभी सब कुछ ठीक है, अभी शायद कोई संकट की इतनी गुंजाइश नहीं है, सब जो दुष्कृत ना थे, राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, वो सब नष्ट हो चुके हैं, और अधर्मी राजा था, अभी धर्मी राजा, धार्मिक राजा युधिष्ठिर महाराज मेरे पुत्र अभी राज्याभिषेक हो चुका है। अभी टेंटेटिवली कोई संकट आने की संभावना नहीं है, और अभी आप जा रहे हो, हमारे लिए यही संकट है, हमारे लिए यही संकट है। आप बोलेंगे कितना अच्छा है, अभी प्रमोशन भी हो चुकी है, जो हमारे मन की है बातें भी हो चुकी हैं, अभी तो कोई जरूरत नहीं भगवान, आप अभी यू कैन गो, योर जॉब इज डन, जब जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे आपको, तब आ जाना। नहीं, वो बुद्धिमान क्षत्रिय है, वो जानती है कि जब तक ये थे ना तब तक सब कुछ सही था, अभी लग रहा है सब कुछ सही है लेकिन सब कुछ गड़बड़ होने वाला है क्योंकि ये जा रहे हैं। तो केंद्रीभूत भावना क्या है? भगवान है, भगवान का होना या नहीं होना यही आपके सुख और दुख और शुभ अशुभ का प्रमाण है। आपके जीवन भगवान है तो आपका जीवन शुभ स्थिति में है, और आपके जीवन भगवान नहीं है तो आप कितने भी धनी होंगे तो आप अशुभ स्थिति में हैं, क्योंकि आपको कब माया घसीट लेगी नीचे कोई गारंटी नहीं है। आपका धनी घसीटेगा, आपका सौंदर्य घसीटेगा, अगले उस पर वर्णन करेंगे वो कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो होने से भगवान का ध्यान हम परिणामकारक रीति से नहीं कर सकते, इफेक्टिवली भगवान का ध्यान नहीं कर सकते। तो क्या कह रहे हैं आगे, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भीर ए धमान मदह पुमान नैवार हत्या विधातांतु नैवार हत्या विधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। इसको ठीक से पढ़ेंगे, हे भगवान आप केवल उनके लिए ही प्राप्त हो सकते हैं। कौन है वो? तो वास्तव में अकिंचन गोचर है, गरीब है, मतलब दीन है, दीन, और उसे विरुद्ध दिशा में सोचेंगे तो कौन आपको पा नहीं सकते हैं इफेक्टिवली, जिनका जन्म बहुत उच्च कुल में हुआ है, जन्म, दूसरा ऐश्वर्य, जो बहुत ऐश्वर्य संपन्न है, धनी कम परिवार के हैं, संपन्न परिवार के, तीसरा जो बहुत विद्या विभूषित हैं, हाईली एजुकेटेड, और चौथा जो बहुत सुंदर हैं। देखो आपको फिल्म स्टार्स बहुत कम वक्त मिलेंगे जो बहुत सुंदर होते हैं, मतलब तथाकथित सुंदर है उनका, लेकिन आम आदमी से ज़्यादा सौंदर्य होते हैं, है ना, बहुत सारा मेकअप वगैरह करते हैं लेकिन उसमें से आपको बहुत कम वक्त मिलेंगे, क्योंकि सौंदर्य एक ऐसी चीज़ है ना, वो इतना गर्व पैदा करते कि मैं सुंदर हूँ, यही बात है, बस मैं सुंदर हूँ, यही बात पर ही जिंदगी चली जाती है, और भगवान मान कुछ याद नहीं आता है। और कोई हमारे इतना सुंदर व्यक्ति सामने आया ना आपने, तो पता है क्या होता है? हाँ ठीक है, एक जोक है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मेट अनदर ब्यूटीफुल लेडी एंड शी सेड हाँ ठीक है, इट्स ओके, नथिंग ग्रेट, क्योंकि वह एनवी भी होती है ना हमारे ऊपर, कोई सुंदर होगा तो। सुंदरता एक ऐसी चीज़ है, एक मैरिलिन मोनरो नाम की एक सुंदर स्त्री थी, मैरिलिन मोनरो, जो हमारे बचपन के टाइम पे बहुत बड़ी हीरोइन थी, आप लोगों को पता नहीं होगा कि नहीं, मतलब 20th सेंचुरी के शुरुआत के हाफ में वो बहुत बड़ी, इतनी बड़ी सुंदर थी वो कि कई देशों के राजा और राजपुत्र उसके पीछे थे विवाह कराने के लिए, प्रपोजल देने के कौन आ रहा है, अनेक देशों के राजा प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट्स उसके पीछे थी, इतनी सौंदर्यवती थी वो। मैंने उसका फोटो भी देखे हैं, बहुत पुराने ब्लैक एंड व्हाइट वाले, बहुत अप्रतिम सुंदर थी वो। लेकिन आप देखिए सुंदरता कैसी होती है। अभी सुंदर तो हम भी थे एक समय पे, लेकिन बुढ़ापा तो आने वाला है ना। वैसे भी कहा गया है षोड़श वर्षे गर्दभी, 16 साल की उम्र में गधी भी बहुत सुंदर दिखती है। जवानी का ऐसा एक वसंत ऋतु जीवन में भगवान ने उत्पन्न किया है कि 16 वर्ष में घोड़ी जो गधी गधी होती है ना, वो बहुत सुंदर दिखती है। लेकिन समय आने के बाद में क्या होता है, अभी आप वो कभी कभी देखता हूँ फोटोग्राफ, माला सिन्हा और वो वहीदा रहमान के फोटो देखता हूँ, कितनी सुंदर थी वो स्त्री। अभी देखो कैसे दिखती है, शर्मिला टैगोर को देखो आप, क्योंकि हमारे बचपन की हीरोइंस थी जो बहुत सुंदर माने जाती थी। तो ये जब स्त्री मैरिलिन मोनरो, जब उसके चेहरे पर एक लकीर आई ना पहली बार, तो वो दुखी हो गई वो। फिर दूसरी आ गई, फिर मेकअप से ढकना ढका उसको, लेकिन फिर भी तीसरी आ गई। फिर ऐसी स्थिति आ गई कि मेकअप के बाद भी वो लकीर दिख रही है। कुछ लकीर लगती है मेकअप से, फाउंडेशन से, और कुछ दिखाई पड़ती है कि मेकअप करने के बाद भी ये बुजुर्ग व्यक्ति है, ये आपको पता चलता है। 60 ईयर्स का व्यक्ति मेकअप कर गया तो 24 का लगेगा नहीं, वो 35 का 30 लगेगा, लेकिन 70 ईयर्स का 35 लगेगा नहीं, है ना, ये कॉमन सेंस है ना। तो वो इतनी डिप्रेस हो गई ना, उसने बाहर जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि पूरी दुनिया उसके सौंदर्य से प्रभावित है। उसका नाम ही सौंदर्य के लिए है, उसको देखने के लिए लोग आते हैं, तड़पते रहते हैं। तो उसको वो बात ही सहन नहीं हुई कि मैं वृद्धा हो रही हूँ, मेरा सौंदर्य प्रकृति के और काल के प्रभाव से कम कम हो रहा है, ये उसको सहन नहीं हुआ। और उसने चार दीवारी में अपने को बंद करना तय किया। और चार दीवारी जब व्यक्ति बंद होता है ना, जैसे कोरोना में, तो क्या होता है बताइए, आप बताइए, डिप्रेशन। 7% लोगों को कोरोना हुआ है, लेकिन 50% समाज मनोरुग्ण से, मनो क्या कहते हैं उसको, तनाव से ग्रस्त है आज आज की तारीख में। 7% लोगों को कोरोना हुआ है और वो ठीक भी हो चुके हैं, और 50% पॉपुलेशन जो है, जनता जो है, वो मनोवैज्ञानिक दबाव में है, क्योंकि केवल चार दीवारी रहने से उनको दिमाग उनका खराब हो गया है, इतना डर बैठ गया मन में। तो ये भी चार दीवारी में बैठ गई, केवल आईना देखती थी रोज और गिनती थी 1, 2, 3, 4, वही काम था। जो अपने सौंदर्य से इतना आसक्त है उसका ऐसा ही होता है, अरे एक बाल सफेद हो गया। वो हमारे बचपन में हमारे हम तो चावल में रहा करते थे, तो जो जो व्यक्ति ऐसे ही अभी 35-40 में आ रहे ना, उनके एक एक बाल पकते थे, तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों को बुलाते थे, बेटा उखाड़ दो उसको, तो हम जाके उनके एक एक बाल ढूंढ के उखाड़ते थे, उसकी जगह नहीं आते थे फिर बाद में। ये स्थिति है, धन की भी ऐसी स्थिति है, धनी व्यक्ति को भगवान की याद नहीं आते कभी। हाँ, तो कहने का तात्पर्य आगे बताता हूं। आखिर में उसने आत्महत्या कर ली, विश्व के सबसे सुंदर युवती ने, केवल बुढ़ापा आ रहा है इसी एक विचार से जो उसको स्वीकार नहीं कर पाई वो, और यदि उसने आत्महत्या कर ली तो कहाँ गए वो सब राष्ट्रपति और राजकुमार, वो सब कहाँ गए, अपनी जगह पर रह गए, ये ढेर हो गई, अपनाया गया उसके शरीर को। क्या हुआ सौंदर्य का, वो सब तथा कथित सौंदर्य वाला शरीर ना, वो जमीन के अंदर के मिट्टी बन गया, वो जिस पर हम लोग इतना नाज करते हैं, इतना गर्व करते हैं, इसको दुलारते हैं, इतना मेकअप शैम्पू क्या क्या, इतने करोड़ों की इंडस्ट्री चलती है इसको सजाने के लिए। जो सुंदर नहीं है उनके लिए भी, सुंदर है उनके लिए भी, लेकिन दोनों जो सुंदर है भी और नहीं भी, उनका आखिरी अंजाम क्या होता है, बुढ़ापा। मेरी मम्मी अभी 92 ईयर्स की है, आप मेरे मम्मी का फोटो देखेंगे ना 19 साल का, तो मेरे पिताजी एकदम दिल से बताते थे हमको कि मैं बहुत ही मोहित हो गया था, एकदम भ्रमित हो गया था उनका सौंदर्य देखकर, मेरी मदर का। आज देखेंगे ना तो वो 35 की 31 किलो उसकी है, और इतने क्या कहते हैं उसको, रिंकल्स पड़े हुए हैं हर जगह पर, याददाश्त नहीं है, इतने लंबे घुटने तक काले घने बाल थे जो 80 साल तक काले थे, क्योंकि 92 में इतनी जर्जर हो चुकी है वो। आप यकीन नहीं करेंगे कि यही स्त्री का ये फोटो है। और मैं जब जन्म हुआ मेरा तो 36 साल की थी माँ, जब मैं समझदार हो गया तो माँ 50 साल की थी, तो वो भी इतना सुंदर फोटो था माँ का 50 साल का भी, लेकिन आज माँ कहाँ है सौंदर्य। शरीर में सौंदर्य नाम की वस्तु ही नहीं है कि भाई ये नाक सुंदर थी वो भी सुंदर दिख रही है, ऐसे भी नहीं है। तो हम लोग आसक्ति और मन उन पर लगाते हैं जो चीज नष्ट ही होने वाली है। तो ये हुआ सुंदरता का, चलो श्री। फिर उसके बाद में क्या कहा है, ऐश्वर्य। कितने लोग धनी है दुनिया में इसमें, लेकिन जब मरते हैं तो सब कुछ बच्चों को छोड़ के जाते हैं, है ना। उनका जीवन भर तो कमाने में जाता है और उसको भोगते कौन है, उनके बच्चे या उनके बच्चों के बच्चे। इतनी मेहनत करने के बाद में, जीवन भर लगने के बाद में भी समाधान नहीं होता है, और भी और भी और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, लगे रहते हैं उसके अंदर। हमारे पास जितना है मुझे और चाहिए, आपके पास जितना है आपको आपसे और चाहिए, और सबसे भारत का धनी व्यक्ति जो है उसके पास जितना है उसको उससे भी और चाहिए, और जो विश्व का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है वो सोचेगा कि मुझे उससे भी ज़्यादा चाहिए, बना रहूँ मैं टॉप पोजिशन पर और मेरे पोजिशन में भी ऊपर चला जाऊँ। आई वॉन्ट टू अर्न, अभी मेरे पास अगर 85 बिलियन डॉलर्स हैं तो मैं 100 को टच करना चाहता हूँ। दिस इज द होल लाइफ। और ये चक्र के अंदर, धन के चक्र के अंदर कहाँ भगवान मिल सकते हैं आपको, इतना ऐश्वर्य है, खर्च करने में कोई कठिनाई नहीं है, जो चाहे आप एक प्लेन खरीद सकते हो, एक टापू खरीद सकते हो। वो था ना माइकल जैक्सन, उसका एक टापू था पूरा 75 मिलियन डॉलर्स का, एक टापू था पूरा बेट उसका था समुद्र के बीच में, और वो केवल अकेले रहता था, ना उसकी पत्नी थी ना कोई परिवार था, एक डॉक्टर था उसको जिसने उसको मार डाला आखिर में, और ढेर सारे नौकर थे, लेकिन मालिक एक ही था उसके अंदर पूरे टापू के अंदर। वो पूरा फ्रस्ट्रेटेड था, इतना सब होने पर भी एक दिन मर गया, मतलब मार दिया गया उसको। यश था, कीर्ति था, ऐश्वर्य था, सब कुछ था, इतना यश था उसके पास कि वो एक बार अंधेरी में आया था इंडिया में, अंधेरी में आया था बड़े कॉम्प्लेक्स में। तो आप जानते ना वो कैसे होते हैं फिल्म स्टार, वो बड़े मशहूर लोग कैसे होते हैं, ऐसा हाथ ऐसा लोगों को लगाते हैं, लोग ऐसे 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 करके उसका हाथ लगाते हैं। तो उसका हाथ जिन जिन आदमियों को, खास करके औरतों को जहां जहां लगा ना, उन्होंने 7 दिन हाथ नहीं धोया अपना। ये हकीकत है, अभी आप हंस रहे हैं लेकिन हमारे में ऐसे लोग हैं कि माइकल जैक्सन का हस्त, क्या कहे उसको, शुभ हस्त का स्पर्श मेरे हस्त को हुआ, ये मेरा हस्त कितना भाग्यवान है। तो वो हाथ नहीं धोया 7 दिन तक, और उसका अंतिम स्थिति क्या हो गई, एक तो इतना विफल्यग्रस्त था, इतनी दवाई खाता था तनाव की, ना कोई सुख है, ना कोई पत्नी है, ना कोई प्रेम करने वाला है, सब लोग चोर है, सब लोग लूटने के लिए फंसाने के लिए बैठे हुए हैं, साजिश करके उसको दवाई एक्स्ट्रा देके उसको खत्म कर दिया गया उसकी प्रॉपर्टी को चोरने के लिए। किधर है ऐश्वर्य, किधर है, कहाँ है तुम्हारा, जो जिसके लिए आप इतना लड़ रहे हो वो कहाँ है, आपके साथ में मदद करने आ रहा है, आपको बचा रहा है, इसमें आप इतने आसक्त हो। जन्म ऐश्वर्य और अभी श्रुति, श्रुति यानी क्या, ज्ञान। अभी हमारे कॉलेज के समय पर ना, जब हम लोग का सबका रैंक आया था महाराष्ट्र स्टेट में, तो उसमें जो फर्स्ट 5 रैंकर्स थे ना, इतने दिखने में ग्रुप थे लेकिन बड़े बुद्धिमान थे। बाद में IIT के एंट्रेंस में भी उनका रैंक 2nd, 7th, 9th ऐसे आया, दिखने में एकदम ऐसे मोटी मोटी भाई 20 नंबर की क्लास होगी आंखों पे, ऐसे भयंकर चेहरा था उनका, लेकिन बुद्धि इतनी थी, इतनी बुद्धि का ऐश्वर्य था कि एजुकेशन तो ऐसे गया उनका IIT, फिर इसमें भी फर्स्ट आए, उसमें भी MTech, फिर PhD, और फिर विदेश में गए, वहाँ पर भी उन्होंने DSC किया, डॉक्टरेट ऑफ साइंस, ऐसे भयंकर 10-10 डिग्रियाँ हासिल की उन्होंने। तो ना वो ज्ञान का भी एक घमंड उत्पन्न होता है कि मैं बहुत विद्वान हूँ। जो कॉलेज में हमारे, मेरे कमरे में हरे कृष्णा के सत्संग में आते थे, और आज उसमें से एक व्यक्ति विश्व का टॉप मोस्ट डायबिटोलॉजिस्ट बन गया है, द मोस्ट फेमस डायबिटिक डॉक्टर इज दैट पर्सन, जो हमारे कॉलेज में हमारे प्रवचनों में आते थे तब, जब भी करते थे। और जब मैं उनको अभी मिलने गया ना, तो ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन भक्ति, एब्सोल्यूट नो इंटरेस्ट, क्योंकि दिन रात उनके लेक्चर चलते रहते हैं, हर सातवें दिन विदेश रहते हैं, अधिक समय हवाई जहाज में रहते हैं यहाँ से वहाँ जाते हुए। इतना उनका अभी इतना नाम है इस विषय में, इतना ज्ञान है, इतनी अथॉरिटी है कि मुंबई के कोविड के कमेटी में वो चीफ मेंबर थे, अभी मुंबई के कोविड के 3 कमेटी मेंबर थे, उसमें से एक नाम उनका था। तो जब सिंपल थे, बिना इतने बड़े ज्ञान के धनी भागी नहीं थे, तभी भगवान के विषय में इंटरेस्ट आ। लेकिन जब इतना बड़ा यश आ गया ध्यान के आधार पर, तो फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक विषय भी हम लोग निकाल रहे थे बात करते थे, तो भी उसको विषय को टाल के और कुछ बात कर रहे थे। तो क्या हुआ बीच में कि ज्ञान बुद्धि से प्राप्त हुआ ज्ञान जो है ना, श्रुति, वो भी अहंकार का कारण बन जाता है। और धन के लिए तो बताने की जरूरत नहीं आपको, धन तो क्या, भिखारी भी अपने एक टुकड़े पर गर्व करता है। भिखारी पास कुछ नहीं है, वो भीख मांग के ही खाता है, लेकिन उसको गर्व है कि मैं बंबई के सबसे बिजी ब्रिज पर बैठकर भिक्षा मांगता हूं। ये फैक्ट है, मैं आपको कोई भी चीज ऐसा जोक के तरह से मैं बता रहा हूं, ये सब फैक्ट है। यहां तक कि फैक्ट है कि जो दादर के बहुत बिजी ब्रिज पर भीख मांगता है, थोड़ा सा आपको वहां से उठना पड़ेगा बेटा, कोई बात नहीं रोजी, आप दूर रहो उससे, बस दैट्स ऑल। तो मैं ये कह रहा था कि दादर के बहुत सबसे बिजी ब्रिज पर बैठकर जो भिखारी भीख मांगता है, वो अपनी बेटी की शादी करता है तो दहेज में वो ब्रिज देता है उसको कि बेटा आज से तेरे लिए ये ब्रिज मैं दे रहा हूँ भीख मांगने के लिए, मैं कहीं और जाके मांग लूंगा। इतना भी उसको गर्व है कि ये मेरा ब्रिज है, ब्रिज तो उसका है नहीं, लेकिन वो सोच रहा है कि दिस इज माई प्लेस वेर आई बैग, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, गर्व करने के लिए कोई चीज जरूरत भी नहीं है, कुछ है ही नहीं फिर भी गर्व है। कोई भी एक फूटी कौड़ी भी आपको मिलेगी तो आप बोलेंगे मैंने आज भिक्षा मांग के 500 इकट्ठा किए, तुमने क्या 200 इकट्ठा किए, मैं देखो कितना यशस्वी भिखारी हूं, सक्सेसफुल बेगर, है ना। ये चीज दुनिया की सत्यता है। और अगर भिखारी को भीख मांगे हुए धन का इतना गर्व है, भीख मांगने की जगह पे इतना गर्व है, तो आप लोग जायज रूप से तो कमा रहे, कितना गर्व होगा आपको। हम थोड़ी ऐसे हैं, ऐसे कहेंगे ना, हम थोड़ी वो वड़ा पाव खाएंगे, हम खाना है तो वो होटल में जाके खाएंगे, ऐसा होता ना हमारा। गरीब होंगे तो रोड रोड पर भी खा सकते हैं, थोड़ा सा जरा हो गया कुछ, गाड़ी में गाड़ी आ गई तो फिर बोलेंगे थोड़ी रोड पर खाएंगे, वहाँ पर खाया आपने पहले, लेकिन अभी नहीं खाएंगे, बोलेंगे हम तो भी जाएंगे इधर, और बहुत सारे रुमाल होंगे उधर, बहुत सारे लोग आएंगे कपड़े पहने हुए, आपको एक खिलाएंगे, आप उसका बहुत सारा धन दे के खा के आएंगे, क्योंकि आपकी वो स्टेटस है कि मैं ऐसे ही खाता हूँ। ये तो हम लोग मध्यम वर्गीय लोगों की बात कर रहे हैं, बहुत धनी लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग विचार भी नहीं कर सकते उसका। तो ये सब मैं इतना वर्णन क्यों कर रहा हूँ विस्तार में, क्योंकि जन्म उच्च कुल का होना, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, कई लोग तो ब्राह्मण है इसलिए भक्ति में नहीं आते, अरे हमको क्या जरूरत है, तो ब्राह्मण है, हमें सब पता है, भगवद गीता सब हमको मालूम है, उसी के मद में ही रहते हैं और भक्ति वगैरह कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि तो जन्म इनका इतना श्रेष्ठ है। बोले मैं प्राइम मिनिस्टर का लड़का हूँ, उसी में चूर रहता हूँ, कोई बोलेगा मैं मुख्यमंत्री का भाई हूँ, उसी मद में रहता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री का भाई हूँ, बस बड़े बाप का बेटा हूँ, उसी में मद रहता है। और इतनी मस्ती आती है, फिर वो गुनाह करते हैं, बलात्कार करते हैं, चोरी करते हैं, जगह यहाँ वहाँ खरीद के उसको ट्रांसफर कर देते हैं, और क्या क्या ढेर सारी संपत्ति जमा करते हैं, क्यों, क्योंकि मुख्यमंत्री का भाई हूँ मैं, और लोग भी सम्मान करते हैं कि भाई मुख्यमंत्री का भाई है ये। तो ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ कि ये सब भगवान से अलग करने वाली बातें। जन्म जब उच्च होता है, धन जब अधिक हमारे पास होता है, हम लोग बहुत बुद्धिमान और विद्यावान होते हैं, और हम बहुत सौंदर्यवान होते हैं। तो कुंती देवी यहाँ कह रही है कि आप भगवान की भक्ति आसानी से नहीं कर सकते, शरण आपकी शरणागति की भावना नहीं आ सकती। जब कुछ हादसा हो गया, समझो कोई फिल्म स्टार को हादसा हो गया और चेहरे पर ही कुछ हो गया, उसकी 4-5 टाके अड़गा गए, सौंदर्य नष्ट हो गया, तो वो नम्र हो सकता है कि जिस पर गर्व था वही खत्म हो गया, अभी क्या करें, वो शांति कहाँ पाएं, तो शायद भगवान की भक्ति में आ सकता है, लेकिन आमतौर पर नहीं आएगा वो। अगर यशस्वी होते रहेगा ना, यू विल नॉट कम, यू डोंट नीड गॉड ना, व्हेन यू आर टू सक्सेसफुल व्हाई यू नीड गॉड, आपको जरूरत नहीं भगवान की। जरूरत कब होती है, जब आपको कुछ अचीव नहीं हो रहा है, आपको चाहिए लेकिन आपको मिल नहीं रहा है वो, तो भगवान, सोमवार शंकर भगवान, मंगलवार गणपति भगवान, रविवार सूर्यदेव, ऐसे जाते हैं हम लोग फिर याचना करने के लिए। लेकिन सब कुछ आपको मिल रहा है तो आप क्यों जाएंगे उधर, कुछ किधर भी नहीं जाएंगे, उल्टा गर्व से कहेंगे ये लो चेक, वो मंदिर में जाके देखे हो। इतना गर्व से कहेंगे आई एम गिविंग गॉड ऑल्सो टू बिल्ड दिस टेम्पल, आई एम गिविंग गॉड द हाउस, उनको मैं एक घर बना के दे रहा हूँ। भक्ति भाव से नहीं कर रहे, एक अपना एक प्रस्थ जो है ना, अपना एक स्थिति है, पोजिशन है, उसको बनाने के लिए कर रहे हैं। तो कुंती देवी बहुत समर्पक बात कर रही है। वो कहते हैं जो जन्म से श्रेष्ठ है, धन से श्रेष्ठ है, बुद्धि से श्रेष्ठ है, विद्या से श्रेष्ठ है, सौंदर्य से श्रेष्ठ है, वो आपकी शरणागति ग्रहण नहीं कर सकते। तो आप किसके हो, कौन व्यक्ति आपकी शरणागति ग्रहण कर सकता है? त्वाम अकिंचन गोचरम, जो दीन है। दीन का मतलब ये नहीं कि गरीब होना चाहिए, बात याद रखना। डोंट थिंक दीन मतलब गरीब है, कुरूप है, बुद्धू है, मूर्ख है, जरूरत नहीं है। दीन मतलब ये सब होने पर भी जो दीनता बनाए रखता है उसको आप प्राप्त होते हो। और ये सब नहीं है जिसके पास, वो नेचुरल दीन रहता है, उसके भी आप हो। क्या कहते हैं हम लोग, जिसका कोई भी नहीं होता खुदा होता है उसका यारो, बोलते हैं ना हम लोग। वो भी सही है, क्योंकि जन्म ऐश्वर्य विद्या और सौंदर्य जिसके पास नहीं है वो नेचुरली नम्र रहता है। गर्व करने के पास है ही नहीं कुछ, ना दिखने में सुंदर है, ना विद्या है, ना कुछ पैसा है, कुछ। गर्व किस पे करे व्यक्ति? चार चीज पे करेगा ना व्यक्ति, तो चारों चीज नहीं तो फिर नेचुरल नम्र रहता है वो, ज्यादा भगवान की ओर प्रवृत्त रह सकता है, इजिली भगवान को प्राप्त कर सकता है। और वो जो इन सबके होने पर भी ज्ञान के आधार पर नम्रता बनाए रखता है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो ये बड़ा विचार करने का विषय है कि इतना सब होने पर भी नम्रता कैसे बनाए रखे। वो संत की कृपा होगी तो हो सकता है, संत की कृपा होगी ना, संत की कृपा होगी तो ये हो सकता है। ये चमत्कार संत की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। धनी होने पर भी नम्र होना कितनी मुश्किल बात है, सुंदर होने पर भी नम्र होना, गर्व नहीं करना सौंदर्य पर, संत की कृपा से हो सकता है। और त्रिनादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदिना कीर्तनीय सदाहरी, वही व्यक्ति जैसे कुंती कह रही है निरंतर भगवान का स्मरण कर सकता है जो नम्रता को बनाए रखता है, जो दूसरों को आदर देने में तत्पर रहता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, छोटा हो बड़ा हो, आदर के योग्य हो ना हो, लेकिन एक भगवान का अंश के रूप में उसका आदर करने के लिए वो प्रवृत्त रहता है हमेशा। ऐसा ही व्यक्ति भगवान के नाम का निरंतर स्मरण कर सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको इच्छा जरूर है भगवान का स्मरण करने की, लेकिन उसमें खंड खंड क्या होता है, हमारा अहंकार उसमें बार बार खंड डालता है। सुबह आप नम्र थे, दिन में आप थोड़ा तन के खड़े हो गए, शाम को फिर नम्र हो गए, फिर सुबह उठे जब करने लगे तो वापस नम्र हो गए। तो इसमें खंड है ना, इसमें वो क्या कहते हैं इसको, सातत्य नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है उसके अंदर। सततम कीर्तन तो माम नहीं है, बीच में खंड पड़ रहा है। और सतत कीर्तन किए बिना, ब्रज के एक संत हैं बहुत, उन्होंने कहा है कि 23 मिनट 23 घंटे 59 मिनट आप अगर भगवान को याद करते हो और 1 मिनट भूल जाते हो तो भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। कितना गहन विषय है ये। अभी 23 घंटे 59 मिनट जो भगवान को याद कर सकता है बिना भूले, वो भी कितनी बड़ी अचीवमेंट है। सो का भी रहा है फिर वो, मतलब नींद में भी उस स्मरण कर रहा है ना वो। अगर ऐसे व्यक्ति की अगर व्याख्या करते हैं हम लोग जो 23 घंटे 59 मिनट याद करता है, मतलब वो नींद में भी कर रहा है और जागृति में भी कर रहा है, मतलब निद्रा में भी वो कर सकता है, इतनी उसकी स्थिति हो चुकी है। और वो भी अगर कहते हैं 1 मिनट भी भूल गया ना तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि सतत भगवान की स्मृति बनाए रखना कितनी आवश्यक चीज़ है, क्योंकि जब वो बनाए रहती है स्मृति और कभी भी मृत्यु होती है तो वो स्मृति के समय ही होगी और भगवान की प्राप्ति होगी, है ना। आपको पता नहीं मृत्यु कब होगी, और अगर स्मृति आपकी निरंतर बनी रही है तो आपको कभी मृत्यु होगी तो आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं ना। तो इसलिए अगर निरंतर भगवान की स्मृति प्राप्त करनी है तो दूसरों को आदर देना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दूसरों को सम्मान करना। और वो कैसे हम कर सकते हैं, अगर मैं आपसे धन से बड़ा हूं और आप धन से छोटे हैं मेरे से, तो मैं आपका आदर करना स्वाभाविक नहीं मेरे लिए। मैं आपसे ज्यादा सुंदर हूं, आप इतना सुंदर नहीं हो, तो मेरे लिए आपका आदर करना इतना स्वाभाविक नहीं है। मैं अगर उच्च कुल का हूँ, आप मेरे से नीचे कुल के हो, तो आपका आदर करना मेरे लिए स्वाभाविक नहीं है, इट्स नॉट नेचुरल। तो फिर कौन से प्लेटफॉर्म पे मैं आपका आदर कर सकता हूँ, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर, वैसे ही मैं सोचूंगा उस प्लेटफॉर्म पर तुरंत आपका सम्मान करूंगा, कौन सा प्लेटफॉर्म है वो? सोल। जब मैं सोचूंगा कि मैं भगवान का अंश हूँ और मैं सोचूंगा कि आप भगवान के अंश हूँ, तो आदर उत्पन्न होना बहुत सहज है। वो ऐसा एक स्थिति है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि जिस स्थिति में जैसे ही आप सोचोगे कि मैं शायद धनी हूँ, प्रधानमंत्री हूँ देश का, लेकिन मैं भी आत्मा हूँ, सच्चिदानंद आत्मा ममय वांछो जीवलोके, और ये भी सच्चिदानंद आत्मा ममय वांछो जीवलोके हैं। तो जिस तरह से आत्मा होने के नाते मैं सम्माननीय हूँ, वैसे आप भी सम्माननीय हो, मैं आपका आदर करता हूँ। एक ही प्लेटफॉर्म है, मतलब क्या नम्रता है ना, प्लेटफॉर्म क्या है, वो नम्रता का प्लेटफॉर्म है। जब आप एक दूसरे को समझते हो कि ये भगवान का अंश है, तो फिर आप कुत्ते को भी सम्मान करोगे क्योंकि कुत्ता भी भगवान का अंश है, फिर आप बिल्ली का भी करोगे, उसको हैट हैट नहीं करोगे, सम्मान करोगे, आप सभी जीवन भगवान को देखेंगे। तो वो जो स्थिति है ना, ब्रह्मणा गवि हस्तिनी विद्या विनयन संपन्ने, ब्रह्मणा गवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना, यानी विद्या जब विनयता मतलब विनम्रता के साथ में होती है ना, तब वो बहुत श्रेष्ठ बन जाती है। और वो क्या करती है, जब विद्या विनम्रता के आधार पर होती है तो वो क्या निर्माण करती है, फिर वो ब्राह्मण को, हाथी को, गाय को, इंसान को, चांडाल को, कुत्ते को, सभी को एक ही भाव से देखते हैं, और एक ही भाव से मतलब भगवान का अंश के रूप में देखकर उनका सम्मान करते हैं। तो ऐसा ही व्यक्ति भगवान का निरंतर स्मरण कर सकता है, ऐसी व्याख्या चैतन्य महाप्रभु ने की है। तो ये बहुत ना गहरे विचार की चीजें हैं जो कुंती माताएं बता रही है। कुंती की प्रार्थना ऐसे ही नहीं भागवत में आई है। वो एक वो ऐश्वर्य संपन्न स्त्री थी, राजस्त्री थी ना वो, लेकिन उनकी प्रार्थना को भागवत में एंट्री मिली है, भागवत में उसका प्रादुर्भाव कर दिया गया है। सुखदेव जी ने भी उसको उचित समझा कि इनकी प्रार्थनाओं को भागवत में परीक्षित महाराज को इमरजेंसी में बताना चाहिए। अगर वो कहते कि 7 दिन का ही समय है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको बताओ, बाकी सब बताने के लिए समय नहीं है इनके पास। ऐसे होते हुए भी कुंती की प्रार्थनाओं को उन 7 दिनों के वर्णन में स्थान दिया गया, उचित स्थान दिया गया, और भागवत के शुरू में बताया उनको, प्रथम स्कंध में बताया। मतलब जब भागवत शुरू हुई तो तुरंत उन्होंने शायद पहले दिन बताया होगा, तो फर्स्ट कैंटो फर्स्ट स्कंध पहले दिन आया होगा ना। तो इसका मतलब ये कुंती माता जी की प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पर बहुत गहरा है, एक श्लोक है ना ऐसा, इतना गहराई में है कि प्रभुपाद जी इसको गाते थे और गाकर उन्हें रिकॉर्डिंग करके रखा है, और भक्ति वेदांत अस्पताल में ये रिकॉर्डिंग हमेशा बजते रहता है। इसका श्लोक हम लोग ऑलमोस्ट रोज सुनते हैं, विपदा संदुता शश्व तत्र तत्र जगत गुरु, ऐसे प्रभुपाद जी करतार लेकर उसको गाते रहते हैं, पूरा इतनी प्रार्थनाएं सब गा रहे हैं, और इन प्रार्थनाओं को लोग याद करते हैं, कार्तिक महीने में उनको उच्चारण करते हैं, अधिक मास में उच्चारण करते हैं, पवित्र समय पर उच्चारण करते हैं। इतनी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि इतने महान महान विचार जो हैं वो माता ने भगवान के सामने प्रकट किए। देखो एक आखिरी बात बताता हूँ आपको मैं, कि जीवन में हम क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं, है ना, दुखों का सिलसिला चल रहा है तो कब बंद होंगे, कब बंद होंगे, कब बंद होंगे, ऐसा आप सोचते रहेंगे, कब खत्म होगा ये सब, पता नहीं भगवान कब खत्म। वो इनके जन्म में चलता रहा लाइन से और समाप्त हो गया, तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा हो गया, अभी हम लोग ना चैन की नींद सो सकते हैं। सब लोग क्या चाहते हैं, चैन की नींद चाहते हैं, और चैन की नींद के लिए दुखों का सिलसिला बंद होना चाहिए, तभी चैन की नींद लेने का समय आ गया है। लेकिन कुंती देवी की विचारधारा क्या है, अभी संकट शुरू होने वाला है। जब चैन की नींद सोते हैं ना, जैसे मराठी में कहते हैं गाफिल, गाफिल मतलब क्या, अनअवेयर, को हिंदी में क्या कहते हैं, बेफिक्र। संकट सबसे लापरवाह, संकट सबसे कभी कभी आता है जब हम लापरवाह होते हैं, जब सतर्क होते हैं ना तो हम उसका सामना ठीक से कर सकते हैं, लेकिन लापरवाह व्यक्ति कैसे, लापरवाह व्यक्ति रहेगा तो वो संकट में अधिक गिरेगा। तो वो सोच रही है कि अभी सब कुछ ठीक हो गया है, सब दुख समाप्त हो गए हैं, अभी कोई दुख की गुंजाइश नहीं है, जो मन चाहिए चीजें सब कुछ हो चुकी है, अभी हम चैन की नींद सो सकते हैं। तो वो बुद्धिमान स्त्री है, प्रगत उन्नत स्त्री है, इसलिए वो क्या सोच रही है, नाउ द रियल डेंजर इज एक्सपेक्टेड, व्हेन द मोस्ट डेंजर इज एक्सपेक्टेड, व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट द डेंजर, दैट्स द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन, है ना, व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट डेंजर एट ऑल, दैट इज वी आर मोस्ट वल्नरेबल टू डेंजर। जब आप सतर्क रहते हो ना तब आप अच्छी स्थिति में हूँ। वो जो था ना ओसामा बिन लादेन, वो कैसे मर गया? वो जो था ना एक्सपेक्टिंग कि कुछ डेंजर हो सकता है, गन भी दूर रखी थी उसने, मतलब इतनी इधर ही थी लेकिन इतनी दूर थी कि वो उठा नहीं पाया उसको, उसके पहले उसकी मौत हो गई। बिकॉज वो बेफिक्र था उस समय कि मैं इतना ऐसी अनजान जगह पर बैठा हूँ, इतने किसी को पता नहीं है, ऐसी जगह बैठा हूँ, मुझे यहाँ पर कौन पहुँच सकता है, कहाँ से आएगा, कोई व्यक्ति आ नहीं सकता यहाँ पर। लेकिन जब सबसे अधिक लापरवाह था तो हवाई मार्ग से लोग उतरे और उसको कभी कल्पना ही नहीं थी कि इस स्थिति में कुछ हो सकता है। उस स्थिति में बंदूक को पहुंचने के पहले उसके अंदर गोलियां चली और ख़त्म हो गया वो। तो क्या कहते हम लोग, क्या नज़र हटी दुर्घटना घटी, रोड पे लिखा रहता है हमेशा, हाईवे पे, व्हेन वी आर मोस्ट ऐसा रिलैक्स्ड तभी दुर्घटना होती है। जब हम सतर्क रहते हैं, अरे अभी तो यहाँ से यहाँ तो हो रही है, मुझे तो यहाँ से 28 में छोड़ के जाना है, बेल्ट क्यों लगाए, उधर ही दुर्घटना होती। व्हेन यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग दैट्स द टाइम यू गेट डेंजर इन लाइफ। तो ये बात कुंती को पूरी तरह साक्षात्कार के रूप में पता है, शी इज अवेयर एंड शी इज फुली रियलाइज्ड कि दिस इज सिचुएशन, अभी सबसे डेंजरस स्थितियाँ शुरू होने वाली है क्योंकि अभी भगवान जा रहे हैं, इनके सुरक्षा कवच में इतने दिन थे तो संकट में भी बचे हुए थे, अभी इनका सुरक्षा कवच जाएगा तो सबसे डेंजरस कंडीशन आएगी। ये भक्त है, दिस इज डिवोटी, दिस इज इंटेलिजेंस, इसको ही दिव्य बुद्धि कहते हैं। मराठी में एक कहावत है, जो ना देखे रवि तो देखे कवि, मतलब जो सूरज भी देख सकता नहीं वो कवि देखता है अपने बुद्धि से और अपने इमोशन से। वैसे भगवान का भक्त जो है ना, वो आम आदमी जो देख नहीं सकता वो देखता है कि दिस इज डेंजरस, वो पहचानता है बिफोर डेंजर कम्स। और डेंजर क्या है, भगवान को भूल जाना यही डेंजर है। सबसे खतरनाक चीज़ दुनिया में एक ही है जो हमको असुरक्षित बना देती है, असुरक्षित बना देती है, वो भगवान की विस्मृति है। तो हमारे तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, हे ची दान देगा देवा तुझा विसर न भावा, कि हमें एक ही, हम आपसे वरदान मांगते हैं, एक ही वरदान मांगते हैं कि आपकी कभी कभी हम आपको भूल न जाएं, आपकी कभी विस्मृति न हो। और दुनिया में कोई डर की बात नहीं है, दुनिया में तो डर संकट तो होते रहते हैं, लेकिन संकट भरे स्थिति में भी अगर निडर बनकर रहना है, अगर संकट से मुक्त रहना है, तो एक ही वेपन है हमारे पास, एक ही अस्त्र है, वो है भगवान की स्मृति। वो रहेगी आपकी तो कितने भी बड़े संकट में रहेंगे तो आप तर जाएंगे, कितना भी बड़ा संकट होगा एक भगवान की स्मृति आपको तार देगी। तो कुंती देवी बार बार बता रही है हमको कि चाहे आप ग्रस्त हो, गृहे थाको, बने थाको, सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूले ना को, बदने हरि नाम करो रे, गाए गौर मधुर स्वरे, नाम गाए गौर मधुर स्वरे। तो कोई सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, गृह थाको घर में रहो, या बनने थाको यानी वन में चले जाओ यानी सन्यासी हो शायद। सदा हरि बोले डाको, डाको यानी पुकारना बंगाली में, सदा भगवान को पुकारते रहो। और क्या कहा गया है, सुखे दुखे भूले ना को, सुख दुख में कभी भूलो नहीं उनको, वदने हरिनाम करो, मुख से हरिनाम करते रहो हमेशा। सबसे बड़ा वैक्सीन है वो, हमको लग रहा है अभी कोरोना वैक्सीन आएगा हम सब लोग वही बच जाएंगे, अब एक बार वैक्सीन तो आने दो तो हम सब संकट मुक्त हो जाएंगे। लेकिन 21 इयर्स की मेरे क्लासमेट की सुंदर लड़की, MBBS डॉक्टर क्लासमेट था मेरा, उसकी सुंदर लड़की अमेरिका में कार एक्सीडेंट में मर गई, कोरोना नहीं हुआ था उसको, कोरोना काल में लॉकडाउन के अंदर कार एक्सीडेंट में गुजर गई वो ऑन द स्पॉट। तो कोरोना लस आपको क्या बचाएगी, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं हमको समाप्त करने के लिए, और कोरोना कोरोना करके हम इतने प्रभावित हो गए हैं कि वो आएगी लस आएगी तो हम बच जाएंगे, ये सब भूल भुलैया है, सब माया का बड़ा खेल है ये लंबा। सबसे बड़ी वैक्सीन एक ही है, वो है भगवान की स्मृति। द हाइएस्ट वैक्सीन इज द मेमोरी ऑफ द लॉर्ड, रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड। यस राज गौरांग प्रभु, डू यू एग्री विथ मी, नो अदर सिचुएशन कैन सेव यू, वेदर यू आर यंग ओल्ड, ब्यूटिफुल नॉट ब्यूटिफुल, रिच नॉट रिच, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, आरोग्य संपन्न या रोगी, बच्चा या बूढ़ा, या बचपन वाला की बूढ़े वाला या जवान, किसी भी अवस्था में आप रहेंगे जीवन में, आपको अगर सबसे भयंकर डेंजर से बचना है तो एक ही वैक्सीन है, वो है भगवान का नाम और भगवान की स्मृति, उस नाम के माध्यम से आने वाली, वो नाम को उच्चारण करके और नाम को सुन के, श्रुति और कीर्तन दोनों के माध्यम से जो आपकी स्मृति बनेगी, स्मृति श्रुति और कीर्तन से जो स्मृति बनेगी भगवान की, वही सबसे बड़ा वैक्सीन है, उसके बड़ा वैक्सीन कोई नहीं है। जैसे मैं कल आप क्या ड्राइविंग कर रहा था, मैंने क्या बताया जब करने के बाद में, आई वॉज ओनली थिंकिंग कि आई मे डाई एनी मोमेंट, ऐसी गाड़ी गई ऐसे फ्लैट से ऐसी गई, सडनली कोई बीच में आ गया, सडनली कट मार दिया, तो एक पलक झपकते हुए भी एक पलक झपकने के अंदर ही आपकी जान जा सकती है। कितने भी कुशल ड्राइवर होंगे, रास्ता भी अच्छा होगा, सब कुछ ठीक है, आप रूल फॉलो कर रहे हो, कोई लेन तोड़ नहीं रहे हो, लेकिन जब आप रोड पर हो तो किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है, किसी भी क्षण। तो मैं जब कर रहा था ये सोच रहा था कि अगर मृत्यु होनी है तो भगवान की स्मृति में होनी चाहिए, तो ठीक है, तो भगवान का दर्शन होगा, और अगर ध्यान हट गया और गुड़ किधर है, ऑर्गेनिक गुड़ कहाँ मिल रहा है, उस विचार में एक्सीडेंट हो गया, तो फिर गुड़ के खेत में जन्म होगा, गन्ने वाले खेत में जन्म होगा। हाँ, क्या आपके मन में टॉप में क्या विचार है वही पहुंचाएगा आपको अगले जन्म में। इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ फैक्ट। अगर गुड़ को कहाँ अभी रुकना है, उसके लिए अंधेरे में दिखता नहीं तो कहाँ रुकना है, उस विचार में होते हुए एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई, तो निश्चित रूप में आप उसी के आसपास जन्म लेंगे जिस विचार में आपने शरीर छोड़ा है। इतना डेंजरस है ये सब। तो हमारा स्मृति कहाँ पर है उसको हमें बार बार सोचना पड़ेगा, वेयर आई एम, वेयर माई माइंड इज, मेरा मन और मेरी विचारधारा, मेरी स्मृति किस दिशा में, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, चाहे बच्चों को संभाल रही हूँ, चाहे कुछ घर साफ कर रही हूँ, लेकिन अगर चेतना भगवान में है तो सब कुछ सुरक्षित है। लास्ट एक बताता हूँ कथा समाप्त करने के पहले, कि इस सारे विवंचना में, विवंचना यानी कि इतना जो संसार है दुनिया में, इतना सारे काम करने पड़ते हैं, इतनी सारी जिम्मेदारी है, इतनी सारी तकलीफें हैं, इन सब में कैसे याद करना है। अभी देखो अनुषा जी बालक को लेकर बैठी है, हाँ समझो अभी बालक सो गया, उसको अंदर रखा या यहाँ रखा, समझो अच्छी तरह सो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सोने का समय भी है और सो रही है, और आप कथा सुन रहे हो, लेकिन आपका ध्यान कहाँ रहेगा, कथा सुन रहे हो आप ध्यान से भी, फिर भी आपका एक मन का पार्ट किधर रहेगा, उठ तो नहीं गई, भूख तो नहीं लगी, डायपर तो गिरा नहीं किया, मतलब, और समझो आप खाना बना रही है, वो सो रही है, यहाँ पर अच्छी तरह सो रही है, कुछ जाली लगाई है, मच्छर की जाली लगाई है, सब तरफ से ऊंचा किया है, गिरने की संभावना नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, हर तरह सुरक्षित है, और आप यहाँ से किचन में गई, आपका सारा ध्यान कहाँ रहेगा, उसने ऊँ भी किया ना, आप तुरंत गैस बंद करके देखने हो क्या हो गया, कुछ नहीं, ठीक है ओके, वापस गैस ऑन करेगी, अंदर गई वॉशिंग मशीन में घुमा दे रही, वापस ऊँ आवाज़ आया, वापस आके देखेंगी, ठीक है ना, मतलब सब कुछ कर रहे हैं आप, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, बालक तो कोई कष्ट तो नहीं है बालक को, उस तरह से भगवान का ध्यान होना चाहिए, उस तरह से भगवान का ध्यान होना चाहिए, जिस तरह से हम बालक, एक प्रैक्टिस है आपके लिए कि आप अभी किस तरह से बालक के विषय में पूरी तरह चिंतन में हो, उसी तरह पे उस जगह पे भगवान आ जाएंगे तो आपका जीवन मुक्त हो गया। अगर नया नया व्यवसायी है और व्यवसाय में उसको प्रॉफिट कमाना है तो कैसे दिन रात सोचता है वो कि हाउ टू मेक प्रॉफिट, हाउ टू सेटल डाउन, दिन रात मतलब दिन रात 24/7 उसका जप में भी वही विचार चलता है, जप कर रहा है सोलह माला लेकिन वही विचार चल रहा है कि मैं अभी आज क्या करूं जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़े, नया नया बिजनेस है अभी सेटल होना है मुझे, यहाँ तक कि मुझे अभी अनुभव है, मैं आपको मेरा खुद का अनुभव बताता हूँ कि चेतना कैसे बनती है। देखिए मुझे ना बहुत शौक था कि मेरी खुद की मोटरसाइकिल होनी चाहिए, और वो तो एक सपना था, तब सपना ठीक था, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि वो आ सकती है और मैं उसके लिए अभी काबिल हो गया हूँ, अब मैंने उसको बुकिंग भी कर दिया है और वो आ रही है। क्या बताऊँ आपको, रोज रात को मैं सपने देखता था कि मैं उसको मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, बिलीव मी एवरी सिंगल नाइट आई वॉज ड्रीमिंग कि आई एम ड्राइविंग मोटरसाइकिल, फिर वो आई मोटरसाइकिल, फिर वो सपने आने बंद हो गए ठीक है। उसके बाद में फोर व्हीलर जब आने का समय आया ना, तो मैं दिन रात ड्राइविंग करता था सपने में, ऑल टाइम ड्राइविंग अ न्यू कार। ये हमारी चेतना की अवस्था है, एक फालतू चीज है। आज मुझे एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं है फोर व्हीलर ड्राइव करने का और टू व्हीलर ड्राइव करने का। तो फोन करता हूँ गाड़ी आके मुझे ले जाते, मुझे एक भी इंटरेस्ट नहीं है अभी बैठूं और ड्राइव करके कहीं चलूं। लेकिन उस समय पे सपना आते थे मुझे कि मैं वो नई गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ। स्मृति में कितना घुस गया था वो। वैसे भगवान की याद आएगी ना तो हम यशस्वी है जीवन में, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो न्यू बिजनेस हो, चाहे वो फोर व्हीलर हो, चाहे वो घर हो। एक जमाना था ऐसे, मैं आपको सच बताता हूँ, वो सृष्टि कॉम्प्लेक्स में ना मैं घूमा करता था साइकिल लेके, ये सोच कर कि कभी जमाने में क्या इसमें से एक छोटा सा घर मेरा हो सकता है क्या। साइकिल लेके घूमता था मैं सेक्टर 2 सेक्टर 1 भक्ति वेदांत के एरिया में, कि कैन देर बी अ टाइम इन लाइफ वेयर आई कैन ओन वन ऑफ दिस हाउस। उस समय घर नहीं था ना, सब परेशानी घर की थी। आज नहीं सोचता हूँ ऐसे साइकिल लेके मतलब बड़े घर को भी देखता नहीं हूँ कि भाई ये मेरा हो सकता है, आई एम हैप्पी, आई एम ओके, आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन कितनी वस्तुओं का चिंतन किया आज तक, कभी मोटरसाइकिल का किया, कभी बीवी पर किया जो गर्लफ्रेंड थी, फिर बाद में घर के ऊपर किया, फिर कार के ऊपर किया, फिर मोटरसाइकिल के ऊपर किया। कितना समय उसमें गया ना, एक विषय को चिंतन करते करते वो ट्रांसफर होते होते, हाउ मच टाइम हैज गॉन। और अभी भगवान का चिंतन करने की कोई अभी तक उतनी ऐसी उत्कंठा उत्पन्न नहीं हुई है कि भगवान दिन रात सपने में आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है अब तक ना। इतना अभी तक वो मोटरसाइकिल उतना प्रेम नहीं हुआ है भगवान से कि सपने में मोटरसाइकिल दिख रही है। वो जब दिखेगा ना सपने में, दिन में भी दिखेगा, रात को भी दिखेगा। एक मराठी में कहावत है, मनी वसे तो सपनी दिसे, मतलब जो मन में रहता है ना वो तो सपने में दिखता है। आप दिन में प्रभुपाद जी बताते थे कि आपने सोने का अंगूठी देखा किसी के हाथ में और एक पहाड़ देखा दिन में, तो आपको रात में ना सोने का पहाड़ दिखाई पड़ेगा, ऐसे प्रभुपाद जी बताते थे। हाँ, एक अंगूठी देखी सोने की और एक पहाड़ देखा, सपने में ज्वाइन हो गया वो और सोने का पहाड़ देखा, तो मन में आपके बस रहा है वो आपको रात में दिखाई पड़ रहा है। अगर मन में भगवान बसे हैं तो आपको रात में भगवान दिखेंगे, कुछ दिला करेंगे आपके साथ में, बात करेंगे। कब आएगा वो दिन, कबे हबे से दिन अमार, वो दिन कब आएगा मेरे जीवन में। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले है ना, फॉर्मूले, गर्व मत करो किस चीज़ पर, आज है तो नहीं है, कल धन है आज धन नहीं है, इट्स ऑल टेम्पररी। नम्र बन के सबका आदर करो तो भगवान की स्मृति बनी रहेगी। भगवान त्वाम अकिंचन गोचरम है, इस बात को याद करो कि वो दीनानाथ है, वो दिनों के ही नाथ है, वो गर्विष्ठ लोगों के नाथ नहीं है। He is not the नाथ ऑफ प्राउड पीपल, वो गर्वनाथ नहीं है, वो दीनानाथ है। तो दिन बनेंगे तो दीनानाथ की कृपा होगी। हे दीनानाथ आओ चले आओ, हे दीनानाथ चले आओ, दीनानाथ दीनानाथ दीनानाथ, हे दीनानाथ आओ चले आओ, हे दीनानाथ चले आओ। तो दीनता अगर सही की होगी ना तो दीनानाथ दौड़ के आएंगे, दीनानाथ दौड़ के आएंगे। ये अनुभव करने के लिए जीवन है कि दीन बनने के बाद कैसे दीनानाथ दौड़ के आते हैं, इसका अनुभव करने के लिए जीवन दिया है भगवान ने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है?
Yes.
ये प्रश्न नहीं है
कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाय हियरिंग कंटिन्यूअसली डेली।
हाँ, माता जी प्रश्न पूछ रही है कि हम लोग ये कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसका उत्तर ये है कि हर रोज आपको भगवान के विषय में श्रवण करना है, हर रोज जितना भी हो सके उतना भगवान के विषय में बोलना है, बात करनी है, चर्चा करनी है, जितना हो सके उतना। और वो हो गया तो फिर चिंतन करते रहना है उसके बारे में। जैसे एक लड़की माता पिता के इच्छाओं के खिलाफ अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती रहती ना, खाते पीते सोते बैठते कपड़ा धोते पढ़ाई करते हुए दिन रात, हाउ शी रिमेंबर्स द बॉयफ्रेंड, हाउ द बॉय रिमेंबर्स गर्लफ्रेंड। किताब खोलेगा तो भी वही दिखाई पड़ेगी उसके अंदर, है ना। वैसे ये स्मृति भगवान की होने का प्रयास होना चाहिए। एक्चुअली माँ और बेटे के बेबी के ज़्यादा एग्जाम्पल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल सारा समर्पक है, बिकॉज वो कैसे है ना, वो ऐसी चेतना होती है, स्मृति होती है कि वो मन से वो हटता ही नहीं विषय जब तक वो प्राप्त नहीं होता है तब तक। दिन रात एक ही विचार सपने अपने उसके चलते रहते। तो वैसे हमको श्रवण चर्चा सब कुछ उनके विषय में होगा, बाकी कार्य करते रहना छोड़ना नहीं है, लेकिन उस कार्य के बन के रहना नहीं है अपने को जो कार्य कर रहे हैं। तो कर्तव्य है, शरीर को संभालना है तो मेहनत करनी पड़ती है, गाड़ी ले तो गाड़ी को साफ भी करना पड़ता है, सर्विसिंग भी करना पड़ता है, वो ठीक है, हम लोग जीते उसके लिए नहीं है सर्विस करने के लिए गाड़ी के लिए। वी डोंट लिव फॉर सर्विसिंग आवर कार, राइट, वी यूज द कार, बट वी डोंट मेडिटेट आई हैव टू सर्विस द कार, दिन रात सपने आ रहे सर्विस कर रहा हूँ गाड़ी की, ऐसा नहीं है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपने खरीदा है उसको मेंटेन करना है, चलाना है, फिनिश्ड। जीना नहीं उसके लिए, जीना उसके लिए भगवान के लिए जीना है। तो यू ट्राई एंड रिमेंबर, डू द एक्टिविटीज इन सच अ वे दैट रिमेंबर द लॉर्ड, और कोशिश करना हमारा काम है। हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते कि मैंने ऐसा किया आज मैं दिन भर 24 घंटे भगवान की याद करूंगा, वो ऐसे ऐसा नहीं होता है, वो तो कृपा से होता है, प्रयास करना हमारा काम है, कृपा से फिर याद आती है भगवान की। और राजगौरंग प्रभु और कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी, दीन बनने में इंडिपेंडेंस तो है ही ना प्रभु। दीन अगर बनना है किसी को तो वो अपनी इच्छा से ही बन सकता है।
जो जैसे जर्मनी है, अच्छा,
मैं आपको क्या बताया, आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आपको गर्व होता है, किस चीज का होता है कि नहीं होता है? भिखारी को भी गर्व होता है। थोड़ा उसको बंद करो आवाज को, जो कोई बोल रहा है। सपना माता जी बंद करो आवाज, म्यूट करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि क्या बता रहा था आपको, मैं हाँ भिखारी को भी अपने भिखारी होने पर गर्व होता है, जिसमें कुछ भी नहीं है, ना जन्म ऊंचा है, ना धन है, ना सौंदर्य है, ना विद्या है, कुछ भी नहीं, फिर भी अहंकार के लिए कोई कारण रहता है ना पूजी। तो नम्रता है ना, वो अपने आप नहीं आती पूजी, इट्स नॉट नेचुरल। कुछ चीजें आपको फेवर करती है नम्र बनने के लिए, जैसे गरीबी, अनपढ़ होना, धन नहीं होना, तो आपको एक थोड़ा सा फोर्सफुली यू आर नम्र बट नॉट रियली नम्र, दैट नथिंग एल्स टू बी प्राउड ऑफ। क्या करें क्या, फिर वो धनी सामने आदमी आएगा तो आपको ऐसे ही होना पड़ेगा ना, क्योंकि वो आपसे ज्यादा धनी है, लेकिन फिर भी मन में वो अंदर घुसी हुई नम्रता नहीं है, वो तो मन में गर्व की प्रवृत्ति है। तो जब इच्छा से आप नम्रता की प्रैक्टिस करते हो और वो गुण कमाते हो प्रयत्नपूर्वक कि मुझे भगवान की प्राप्ति के लिए ये गुण चाहिए, और हृदय से आप प्रामाणिकता से जेन्युइनली यू आर ट्राइंग टू बी हम्बल, देन दैट मेमोरी ऑफ द लॉर्ड कैन बी कंटिन्यूस। बट स्थिति से अगर आप नम्र बने हो तो कल धन आते तुरंत आप अमीर एकदम गर्विष्ठ हो जाओगे ना। उल्टा ऐसा कहता है जो भक्त बहुत गरीब होता है ना, जब वो धनी बनता है तो उसको ज़्यादा गर्व होता है ऐशो आराम का, और जो जन्मजात श्रीमंत है उसको इतना ज़्यादा गर्व नहीं होता है, बचपन से ही उसमें है वो। लेकिन जो गरीब से अमीर बनता है ना, वो ज़्यादा एकदम ऐसे इंजॉय करने में आगे रहता है, ज़्यादा हर चीज़ में उसको रहता है, अरे मैंने इतने मेहनत से धन कमाया है, ये सब मेरी दुनिया मैंने क्रिएट किए, जीरो में से कट, इस ज्यादा गर्व होता है उसको। आई हैव क्रिएटेड माय वर्ल्ड फ्रॉम जीरो, टुडे आई एम फ्रॉम जीरो, आई हैव नो सपोर्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, ज्यादा गर्व होता है उसको। तो वो दिस नॉट जेन्युइन ह्यूमिलिटी। लेकिन नम्रता ही नहीं, उसको कमाना पड़ता है, वो ऐसा एक ऐश्वर्य है, उसको आपको अर्न करना पड़ेगा मेहनत से।
कल्टीवेशन
संतों की सेवा करना है आपको, भगवान के नाम का जप करना है, साधना करनी है और गुरु के प्रति शरणागति से जीवन बिताना है, तब आएगा वो। देखो हमारे पास, हमारा भाग्य क्या है, हमारे पास वैष्णव भी है, हमारे पास भगवान का नाम भी है, हमारे पास सत्संग भी है, सारे साधन जुड़े हुए हैं, हम लोग ले नहीं रहे उसको, इतना ही फर्क है, लेकिन सब अवेलेबल है। लेकिन दो लोग दुनिया में कितने ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं सत्संग क्या होता है, भक्त क्या होते हैं, भगवान क्या होता है, नाम क्या होता है, वैष्णव क्या होते हैं, अतिथि सेवा क्या होते हैं, लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में, तो कितने डेंजरस कंडीशन में है वो। हमारे पास अगर मैं कहूँगा कि वैष्णव की सेवा करो, आपको ऐसा नहीं, कौन वैष्णव कौन होते हैं, ऐसा आपको प्रश्न नहीं आएगा, यू नो हु इज वैष्णव, यू नो हाउ टू सर्व हिम, बस यू हैव जस्ट डू इट, एवरीथिंग इज रेडी। अभी आप बोलेंगे अरे माता जी पनीर मटर बनाओ आज, तो पनीर भी घर पे है, मटर भी घर पे है, तेल भी है, एवरीथिंग इज देयर, तो क्या खाली बनाना है आपको, कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, अरे पनीर कहाँ मिलता है, मटर कहाँ मिलता है, इस सीजन में कहाँ मिलेगा, ये स्थिति है। हमारी क्या स्थिति है, मटर पनीर खाना है, मटर भी है, पनीर भी है, सब कुछ है हमारे पास, दैट इज आवर फॉर्चून, हमको खाली करना है बस, दैट्स ऑल, नो सर्चिंग बिजनेस, वी ऑलरेडी हैव एवरीथिंग। और कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी।
लेकिन जैसे भक्ति की बात करते तो डिसेंडिंग है, कई बार ये सुनने आता है कि जो हमारा खुद का एफर्ट है उससे हम लोग ये
सकते नहीं। डिसेंडिंग प्रोसेस जरूर है, आपके एफर्ट के बिना वो डिसेंडिंग नहीं होती है। कृपा के लिए आप लोग अभी लाइट चलाना है, लाइट चलाए प्रभु जी ना, उनको कनेक्शन करके बटन दबाना पड़ा, लाइट तो वो उन्होंने पैदा नहीं किया, लाइट अपनी शक्ति में है, वो पावर उसकी है, सब कुछ सेटिंग कर रखा है, उनका एफर्ट क्या है उसके अंदर, आपने कुछ भी एफर्ट नहीं है, कंपनी ने लाइट बनाई है, सब एलिमेंट कंपनी का है, सब कुछ बाहर से आया हुआ है, उन्होंने क्या बड़ा काम किया उसमें, लेकिन उन्होंने उसको कनेक्ट करके ऑन किया है, वो अंदर था कबड़ के अंदर, तब प्रकाश नहीं दे रहा था वो, तो डिसेंडिंग मतलब वो है उधर जगह पे, उतर नहीं रहा है वहां से, वो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा और आपका प्रयास डालना पड़ेगा उसके अंदर, जो इनसिग्निफिकेंट है, आपका प्रयास जो है वो इनसिग्निफिकेंट है, इसमें कोई वाद दो रहा ही नहीं है उसके अंदर, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट प्रयास आपको वहां दर्ज करना पड़ेगा, तब जाके डिसेंडिंग प्रोसेस शुरू होगी। वो हौद में होता ना, फाउंटेन होता ना, सब कुछ है वहां पर, पानी है, वो मशीन लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है, सब कुछ है, लेकिन बटन चालू किए बिना वो फाउंटेन चालू नहीं होता है। रात का होता ना फाउंटेन शो, कई जगह पे होता ना फाउंटेन्स, होता ना गार्डन में होते हैं, वो पॉन्ड में होते हैं, उसमें फिल्म भी दिखाते हैं आजकल, मालूम है आपको, फाउंटेन के अंदर पिक्चर दिखाते हैं, पूरा बकायदा प्रोफेशन सुन सकते हैं आप, हमने देखा है इसलिए बता रहा हूँ। वृंदावन में किसी स्वामी जी का वो पानी के पर्दे पर प्रवचन सुना है हमने। आप क्या कहेंगे, आपका एफर्ट तो एकदम इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि आर्किटेक्चर ने आके डिज़ाइन किया है, उसने लाखों रुपये खर्च किए हैं, पॉन्ड बनाया है, सब कुछ किया है, अभी आज क्या कर रहे हो आप, खाली बटन ऑन कर रहे हो, अपने आप सब डांसिंग हो रहा है, उसका पर्दा बन रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, लाइट चालू हो रही है, कलरफुल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो आप कहेंगे कि इतना बड़ा काम करने के लिए क्या ज़रूरी है, बटन ऑन करना ज़रूरी है, तो वो जितना इनसिग्निफिकेंट है उतना ही हमारा एफर्ट इनसिग्निफिकेंट, लेकिन उसके बिना वो फाउंटेन की पिक्चर शुरू नहीं होती है। इसलिए आप कहेंगे हमारा तो कुछ भी रोल ही नहीं है, नहीं आपका ही रोल है सब कुछ, आप जब अर्ज करेंगे ना तभी उसका रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, अपने आप नहीं मिलेगा, योर एफर्ट इज फर्स्ट, जब आप कहेंगे ना यस सर तभी वो शुरू हो जाएगा, आपको चाहिए नहीं तो शुरू कैसे होगा, और आप सोचते रहेंगे मेरे पास तो क्या शक्ति है, मैं कर ही क्या सकता हूँ, तो वो भी वही रहेगा, आप भी वही रहेंगे, अपनी जगह पर रहेंगे आनंद में। You have to do your effort. You cannot say कि I will, my efforts are insignificant. So what is the value of my effort? ऐसा नहीं होता है, आपको अपना काम, अपना प्रयास करना ही है। You have to do your efforts, then God will give mercy to you. अवरोह, descending process. वो जब भी हम बिना एफर्ट के होते तो भी कॉर्डलेस कहते हैं उसको, आपने अभी हमने किधर अपने कोई हमने कोई घर छोड़ के हिमालय में तपस्या नहीं की, कोई गुफा में नहीं रहे, कोई घरदार छोड़ के सन्यास्त होकर वहाँ पर तपस्या करने गए नहीं, कोई दुनिया भर खोज नहीं किया गुरु जी का, हमें तो अपने घर बैठे ही गुरु जी मिले। और हमारे गुरु जी ने गुरु प्राप्त करने के लिए कितना कष्ट किया है, कितना तपस्या किया, घरदार छोड़ के अमेरिका से वैसे ही जैसे पैदल से ही पैदल ही आ गए जैसे वो। तो हमें जो मिला है वो कॉजलेस मर्सी है, उन्होंने इसलिए परिश्रम किया, हमने तो ऐसे ही फ्री में प्राप्त किया है। तो कभी कभी जो बिना एफर्ट के प्राप्त हो ना कॉजलेस, उसकी वैल्यू नहीं होती, फिर उसकी कीमत नहीं होती, कभी हम लोग नहीं करते उसके क्या है? आया वैसे गया तो वी डोंट केयर फॉर इट। जो मेहनत से कमाया होता ना पसीना बहा के, उसको छोड़ नहीं सकते आप इतना जल्दी। जैसे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल बनाया ना मुंबई में हमने, तो फाउंडर डॉक्टर जो है ना जिन्होंने उसको बनाया है वो तुरंत छोड़ के भाग नहीं सकते हैं, नए आए हुए जाके कुछ बताया, बातचीत हो गया, कुछ गलती हो गया, कुछ बुरा लगा तो तुरंत रिजाइन करके चले जाएंगे। लेकिन जो फाउंडर्स हैं उनका 50 अपमान भी करेंगे ना तभी भी नहीं जाएंगे वो, क्योंकि ईट ईट उन्होंने ऐसे पसीने बहा के खड़ी खड़ी कर दी उधर, जितनी ईंटें लगी हुई हैं हर एक ईंट पे कितने पसीने बहाए उनको पता है, तो वो भी वो अपमान उपमान छोड़ देंगे, वहीं पर सेवा करते रहेंगे, क्योंकि मेहनत किया ना उन्होंने, इसलिए मेहनत करना ज़रूरी है। और फिर वो मेहनत का जो फल है ना उसको आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि भगवान की कृपा जो आपने प्राप्त की है, भले वो आपके मेहनत के सामने आपकी मेहनत बहुत तुच्छ है और प्राप्ति बहुत ज़्यादा महान है, फिर भी आपने मेहनत अपनी तरफ से की है ना, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, इसलिए अपनी मेहनत करना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर अपने प्रवचन तो विश्राम देते हैं, वो तुरंत दूसरे मीटिंग में बैठना है, तुरंत इमीजिएटली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संक्षेप में रिविजन करते हैं, जीवन संकट से भरा हुआ है, लाइन से भगवान के होने से ही हम उसे बच सकते हैं। संकट भी आते हैं तो वो अच्छे हैं क्योंकि वो भगवान की याद दिलाते हैं, सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट, ऊंचा जन्म, बहुत सारी विद्या, बहुत सारा धन, बहुत सारा सौंदर्य होता है तो गर्व होता है, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। जो वास्तव में दीन होता है उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे श्याम। सो थैंक यू वेरी मच कनिका सूरी माता जी, सपना माता जी, एवरीबडी। आई एम एंडिंग द सेशन। हरे कृष्णा, जय उतरता रहेगा। थैंक यू, आप लोग प्रसाद पाइए, अपना दूसरा मीटिंग में जाते हैं तुरंत। नहीं नहीं, मैं क्लास में बैठूंगा, अभी अभी इंपॉर्टेंट मेरे लिए बैठना पड़ेगा। मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल लेंगे यार,
उसमें बैठे रूम में ना, बच्चों को इधर भेज देती हूँ फिर मैं।
हाँ, तो ये इसको कोई टच नहीं करना चाहिए क्योंकि डाउनलोडिंग हो रहा है, या तो उसको निकाल के वहाँ रख देंगे, तो वाईफाई तो सब जगह चल रहा है ना। ये दो ही पहले संभाल लो, भगवत हूँ अपना, और मैं भी इसको